नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ए गाइड टू MySQL फिलिप जे प्रैट की डेटाबेस केंद्रित शिक्षण पुस्तक है। यह MySQL को केवल कमांडों की सूची की तरह नहीं बल्कि डेटा को व्यवस्थित करने, सुरक्षित रखने और उपयोगी जानकारी में बदलने वाले तंत्र के रूप में प्रस्तुत करती है। उपलब्ध प्रकाशकीय विवरण के अनुसार पुस्तक में डेटाबेस डिजाइन, डेटा डेफिनेशन, क्वेरी कमांड, डेटा अपडेट, प्रशासन, क्लाइंट टूल्स और MySQL के विशेष विषय शामिल है। इसका उद्देश्य पाठक को ओपन सोर्स डेटाबेस वातावरण में काम करने के लिए क्रमबद्ध आधार देना है। पुस्तक का स्वरूप तकनीकी पाठ्य पुस्तक जैसा है, इसलिए इसका जोर अवधारणाओं को लागू करने योग्य कौशलों से जोड़ने पर है। यह उस समय की MySQL केंद्रित कार्यप्रणाली को समझने में विशेष उपयोगी है, जिसमें स्कीमा बनाना, तालिकाओं में डेटा रखना, उसे खोज पाना और प्रणाली को चलाए रखना एक ही सीखने की श्रृंखला के हिस्से हैं। यह परिचयात्मक स्तर से आगे बढ़कर डेटाबेस के संचालन संबंधी पक्षों की भी ओर संकेत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटाबेस डिजाइन को क्वेरी से पहले रखने की आवश्यकता। पुस्तक के विषय संकेतों में डिजाइन तकनीकों को प्रारंभिक स्थान मिलता है और यह क्रम सार्थक है। किसी डेटाबेस में बाद की हर क्वेरी, रिपोर्ट और अपडेट इस बात पर निर्भर करते हैं कि जानकारी को किन इकाइयों में बांटा गया है और उनके बीच संबंध कैसे परिभाषित किए गए हैं। यदि ग्राहक, ऑर्डर और उत्पाद जैसी अलग प्रकृति की सूचनाओं को एक ही तालिका में मिला दिया जाए तो एक ही तथ्य बार बार दर्ज हो सकता है। इससे संशोधन कठिन होता है और विरोधाभासी रिकॉर्ड बनने का जोखिम बढ़ता है। डिजाइन का उद्देश्य इसलिए केवल तालिकाएं बनाना नहीं बल्कि डेटा के अर्थ को संरचना में उतारना है। उचित पहचानकर्ता, आवश्यक फील्ड, डेटा प्रकार और संबंध यह तय करते हैं कि प्रणाली वास्तविक दुनिया की जानकारी को कितनी विश्वसनीयता से संभालेगी। MySQL के साथ काम सीखने वाले व्यक्ति के लिए यह बिंदु विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत स्कीमा को बाद में सुधारना अक्सर साधारण क्वेरी लिखने से अधिक महंगा होता है। पुस्तक का डिजाइन केंद्रित दायरा पाठक को यह समझने में मदद करता है कि तेज परिणाम पाने की इच्छा और दीर्घकालिक डेटा गुणवत्ता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस दृष्टि से डेटाबेस डिजाइन प्रोग्रामिंग से पहले की योजना नहीं बल्कि पूरे डेटाबेस जीवन चक्र का आधार है। दूसरा, डेटा डेफिनेशन के माध्यम से संरचना और नियमों की स्थापना। डेटा डेफिनेशन का क्षेत्र उन आदेशों से जुड़ा है जिनसे डेटाबेस और तालिकाओं की संरचना निर्धारित होती है। पुस्तक इसे MySQL सीखने के केंद्रीय हिस्से के रूप में रखती है, क्योंकि डेटा को डालने या खोजने से पहले उसके लिए भरोसेमंद ढांचा चाहिए। तालिका का नाम, स्तंभों के नाम, उनके डेटा प्रकार और स्वीकार्य मानों की सीमाएं सभी संरचना के निर्णय हैं। उदाहरण के लिए, तिथि को पाठ की तरह रखने और वास्तविक तिथि प्रकार में रखने के परिणाम अलग होते हैं। दूसरी, व्यवस्था छंटाई, तुलना और वैधता जांच को अधिक स्पष्ट बना सकती है। इसी प्रकार, पहचान संबंधी नियम रिकॉर्डों को अलग पहचान देने और तालिकाओं के संबंधों को संभालने में काम आते हैं। डेटा डेफिनेशन का व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि व्यवसाय के नियमों का कुछ भाग डेटाबेस के स्तर पर लागू किया जाए, ताकि हर अनुप्रयोग को वही जांच अलग से ना लिखनी पड़े। हालांकि संरचना को जरूरत से ज्यादा कठोर बनाना भविष्य के परिवर्तन कठिन कर सकता है, इसलिए अच्छा डिजाइन वर्तमान उपयोग, डेटा की प्रकृति और संभावित विस्तार तीनों को देखता है। इस विषय के द्वारा पुस्तक MySQL को केवल सूचना भंडार नहीं बल्कि नियम आधारित डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में स्थापित करती है। तीसरा, क्वेरी कमांडों से संग्रहित डेटा को निर्णय योग्य सूचना बनाना। डेटाबेस का उपयोग तब स्पष्ट होता है जब संग्रहित रिकॉर्डों से किसी प्रश्न का सटीक उत्तर निकाला जा सके। पुस्तक में डेटाबेस क्वेरी करने वाले कमांडों का समावेश इस व्यावहारिक लक्ष्य को दर्शाता है। क्वेरी का मूल काम जरूरी स्तंभ चुनना, आवश्यक रिकॉर्डों को छांटना और परिणाम को समझने योग्य क्रम में दिखाना है। लेकिन प्रभावी क्वेरी केवल वाक्य विन्यास का प्रश्न नहीं है। उपयोगकर्ता को पहले यह तय करना होता है कि उसका प्रश्न किस इकाई पर केंद्रित है, कौन सी शर्तें लागू है और क्या उत्तर एक तालिका से मिलेगा या संबंधित तालिकाओं को मिलाना होगा। यही कारण है कि क्वेरी की गुणवत्ता पहले किए गए डिजाइन से जुड़ी रहती है। स्पष्ट संरचना होने पर डेटा की पुनरावृत्ति कम होती है और संबंधों के आधार पर अधिक भरोसेमंद परिणाम मिल सकते हैं। क्वेरी में कुल, गिनती या वर्गीकरण जैसे परिणाम भी उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि कच्ची पंक्तियों को सारांश में बदलकर वे संचालन संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर भी परिणाम की विश्वसनीयता शर्तों की सटीकता पर निर्भर है। गलत जोड़ या अधूरी शर्त भ्रामक निष्कर्ष दे सकती है। पुस्तक का यह भाग पाठक को डेटा निकालने की तकनीक के साथ प्रश्न को संरचित ढंग से सोचने की आदत भी देता है। चौथा, डेटा अपडेट में शुद्धता। नियंत्रण और परिवर्तन की जिम्मेदारी डेटा अपडेट से संबंधित विषय डेटाबेस के उस हिस्से को सामने लाता है जहां नई जानकारी जोड़ी जाती है, पुरानी बदली जाती है और अनुपयोगी रिकॉर्ड हटाए जाते हैं। यह कार्य साधारण दिख सकता है, पर डेटाबेस की विश्वसनीयता पर इसका सीधा असर पड़ता है। किसी ग्राहक का पता बदलना, किसी वस्तु की उपलब्धता दर्ज करना या गलत प्रविष्टि हटाना, सभी परिवर्तन हैं जिनके लिए सही लक्ष्य रिकॉर्ड और सही शर्त जरूरी है। यदि परिवर्तन का दायरा स्पष्ट नहीं है तो अपेक्षित एक रिकॉर्ड की जगह अनेक पंक्तियां बदल सकती हैं। इसलिए अपडेट संबंधी अभ्यास डेटा की स्थिति समझने, चयन मानदंड जांचने और परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रित करने की सोच विकसित करता है। यह क्षेत्र डेटा डेफिनेशन से अलग है। डेफिनेशन संरचना तय करती है, जबकि अपडेट उस संरचना के भीतर बदलती वास्तविक सूचनाओं को संभालता है। दोनों को अलग समझना रखरखाव के लिए आवश्यक है। पुस्तक का व्यापक क्रम यह संकेत देता है कि डेटाबेस उपयोग में पढ़ना और लिखना दोनों बराबर महत्व रखते हैं। केवल रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति डेटा गुणवत्ता की जड़ों को नहीं समझेगा और केवल रिकॉर्ड भरने वाला व्यक्ति सूचना के उपयोग को सीमित देखेगा। अपडेट विषय इन दोनों पक्षों को एक संचालनात्मक अनुशासन में जोड़ता है। अंत में प्रशासन और क्लाइंट टूल्स द्वारा डेटाबेस को उपयोग योग्य बनाए रखना। पुस्तक का दायरा प्रशासन और क्लाइंट टूल्स तक जाता है, जो इसे केवल क्वेरी केंद्रित परिचय से अलग बनाता है। डेटाबेस में तालिकाएं और कमांड होना पर्याप्त नहीं है। उपयोगकर्ता को सर्वर तक पहुंच, प्रशासनिक कार्यों और काम करने वाले इंटरफेस की भी आवश्यकता होती है। क्लाइंट टूल्स वह माध्यम प्रदान करते हैं जिनके जरिए उपयोगकर्ता या डेवलपर MySQL से जुड़कर आदेश चलाते हैं, परिणाम देखते हैं और कार्यों का परीक्षण करते हैं। प्रशासनिक पक्ष इससे व्यापक है। इसमें प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से चलाने, पहुंच को नियंत्रित करने और संचालन की निरंतरता पर ध्यान देना शामिल होता है। इस स्तर पर डेटाबेस को एक साझा संसाधन के रूप में देखना पड़ता है, जहां सुविधा और नियंत्रण के बीच संतुलन आवश्यक है। बहुत खुली पहुंच डेटा को जोखिम में डाल सकती है, जबकि अनुचित प्रतिबंध वैध उपयोग को रोक सकते हैं। इसी तरह प्रशासनिक समझ समस्या आने पर केवल एक कमांड की त्रुटि नहीं, बल्कि कनेक्शन, अनुमति या परिवेश की समस्या को पहचानने में मदद करती है। पुस्तक में विशेष MySQL विषयों का उल्लेख भी बताता है कि बुनियादी संरचना और क्वेरी के बाद प्लेटफॉर्म विशिष्ट क्षमताओं को समझना उपयोगी है। यह कवरेज पाठक को डेटाबेस के वास्तविक संचालन संदर्भ से परिचित कराता है। निष्कर्ष में ए गाइड टू MySQL उन विद्यार्थियों, आरंभिक डेवलपरों और सूचना प्रणाली के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है जो MySQL को अलग अलग कमांडों के बजाय पूर्ण डेटाबेस कार्यप्रवाह के रूप में समझना चाहते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से तब है जब पाठक को डिजाइन से शुरू करके संरचना निर्माण, डेटा संशोधन, सूचना पुनर्प्राप्ति और प्रशासन तक एक संगत रास्ता चाहिए। वेब या अनुप्रयोग विकास में प्रवेश करने वाले लोग भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस के साथ सुरक्षित और सटीक संवाद किसी भी डेटा आधारित प्रणाली की मूल आवश्यकता है। पुस्तक की प्रमुख विशेषता इसका व्यापक विषय क्रम है। कई शुरुआती संसाधन केवल क्वेरी लिखना सिखाते हैं, जबकि यह डिजाइन तकनीक डेटा डेफिनेशन, अपडेट, प्रशासन और क्लाइंट टूल्स को भी दायरे में रखती है। इससे पाठक समझ सकता है कि सही परिणाम केवल अच्छा सेलेक्ट लिखने से नहीं आते, बल्कि सुविचारित सीमा, नियंत्रित परिवर्तन और व्यवस्थित संचालन से आते हैं। चूंकि यह एक पुराने संस्करण की पुस्तक है, इसलिए पाठक को आधुनिक MySQL संस्करणों के वर्तमान व्यवहार, सुरक्षा विकल्पों और प्रशासनिक औजारों के लिए नवीनतम आधिकारिक दस्तावेज भी साथ में देखने चाहिए। फिर भी डेटाबेस संरचना, डेटा गुणवत्ता और क्वेरी तर्क के मूल सिद्धांत स्थायी हैं। इसी कारण यह पुस्तक MySQL सीखने के लिए एक क्रमबद्ध आधार और आगे के अधिक आधुनिक अध्ययन के लिए उपयोगी संदर्भ बन सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फिलिप जे प्लैट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।